ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम में शुरुआत में ही सबसे पहला सवाल शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को करते हैं। तो शौनकादि ऋषियों ने सबसे पहला सवाल किया कि हे सुत गोस्वामी, आप श्रील व्यास देव के शिष्य हो, स्निग्ध शिष्य हो और सौम्य शिष्य हो, स्निग्ध और सौम्य शिष्य हो, इसीलिए आपके गुरु ने आपको सब शास्त्रों का अध्ययन करवाया, शास्त्र आपके हृदय में प्रकाशित किए और सारे शास्त्रों का तात्पर्य निचोड़ आपको बताया। तो हमें इन सब शास्त्रों से मतलब नहीं है, अर्थात हमें आप इन शास्त्रों में से जो मनुष्य का, आम जनता का, जन सामान्य का सबसे श्रेष्ठ कल्याण कैसे हो ये बताइए। डोंट बीट अराउंड द बुश, भूषा कुटो मत, सीधे साधी बात, सरल बात और संक्षिप्त में, और जो मनुष्य के लिए सरल हो वो बात बताइए। पुंसाम एकांततः श्रेय, आम जनता का श्रेय कैसे हो और श्रेय कैसा सर्वोच्च, एकांत एकांततः सर्वोत्तम श्रेय, जिससे उनका कल्याण में कोई कमी न रहे, कोई भी कमी न रहे, ऐसा हमें संक्षिप्त में खूब संक्षिप्त एकदम शॉर्ट में, शॉर्ट एज पॉसिबल हमें बताए। बड़े बड़े शास्त्र और पढ़ना और सब कुछ, ये आपके गुरु ने आपको सब कुछ आपके हृदय में प्रकाशित कर दिया। गुरु ने इतनी बड़ी कृपा क्यों की, क्यों की होगी, मैंने कहा क्योंकि सुत गोस्वामी व्यासदेव के सौम्य स्निग्ध शिष्य थे। सौम्य का अर्थ है वेरी स्टेबल माइंडेड और बहुत सरल हृदय, सुकोमल सोच और खूब विनम्र विनीत स्वभाव, सौम्य स्निग्ध शिष्य। तो इन शिष्यों जैसे पर ऐसे शिष्य हो, उनके ऊपर गुरु की संपूर्णतया कृपा रहती है और आपो आप रहती है। और ये आम जनता में भी हम देखते हैं, अगर कोई पत्नी या पति एक दूसरों से सुकोमल भाव से वर्तन करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है एक दूसरे का प्रेम और गुड़ बातें, गुड़ रहस्य सब कुछ एक दूसरों को बता देंगे, स्वाभाविक है। तो ऐसा स्निग्ध शिष्य, सौम्य शिष्य, तो श्रील व्यास देव ने आपको सारे शास्त्रों का निचोड़, अर्क, सारांश बहुत संक्षिप्त में बताया है। तो वो संक्षिप्त में हमें बता दीजिए कि कलयुग में आम जनता का सर्वोच्च कल्याण झटपट कैसे हो, तुरंत। पुंसाम एकांत तब श्रेय और हसी हमें बताइए। तो ये श्लोक के बाद तीसरे श्लोक में कहते हैं कि आपन्न संस्कृतिम घोरम, यत नाम विवशो गृणात ततो सद्यो विमुच्येत यत बिभेति स्वयं भयम्। अर्थात हम ये सब आम जनता मनुष्य जीव सब ये घोर संसार में आ गिरे हैं, आपन्न संस्कृति संसार संस्कृति अर्थात पुनर्जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य मूढ़मते गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, अगर नहीं करेगा तो आखिरी समय में ये पंडिताई काम में नहीं आएगी। व्याकरण की स्टडी, व्याकरण का अभ्यास और पुनरपि जननम पुनर पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में चलता रहेगा। इसलिए भज गोविंदम गोविंद की भक्ति कर, भज भज शब्द भज भक्ति भजन कर। तो अपन संस्कृतिम गौरम ये गौर संसार जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर बना रहता है उनमें मैं आ गिरा हूं। आम जनता हर आत्मा आ गिरा है संसार में। अपन संस्कृतिम गौरम यत नाम विवशो गृणा। और ये संस्कृति कैसी है? दावानल जैसी, जैसे यहाँ दावानल बड़ा महान अग्नि व्याप्त हो उसमें से कोई नहीं बच सकता, जलाएगा आपको। और उसमें हम तड़पते रहेंगे, उसमें हम दुखी दुखी हर पल जैसे ज्वाला बढ़ती है हमारा दुख बढ़ता है। ऐसा है संसार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर। और ये संसार मिटने वाला नहीं है, तो उसको मिटाने के लिए कलयुग में सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय सुत गोस्वामी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यत नाम विवशो गृणात, उनका श्री कृष्ण का नाम अगर विवस्था से भी अगर हम ले ले अनजाने में भी अगर हम ले हलेनवा मजाक में भी ले भूल से भी ले अज्ञानता से भी ले ध्यान के बिना भी ले गाली में भी ले परिहास में भी ले कैसे भी ले विवशो गृणात विवस्था से भी ले ततो सद्यो विमुच्येत तुरंत ये संसार में से जीव मुक्त हो जाएगा। ततो सद्यो विमुच्येत यत विभेति स्वयं भयम् और इन नाम से स्वयं भय भी भयभीत होता है। भगवान के नाम से स्वयं भय भी भयभीत होता है। तो उसके बाद में कहते हैं कि कलयुग का जो जीव है वो कैसा है, तो कहते हैं कि कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग का जीव कैसा है? कलो यस्मिन युगे जना मंदा मंद वेरी वेरी स्लो रिटार्डेड काइंड ऑफ मंद मंदा सुमंद मतयो और मति बुद्धि मंद है, मंद भी नहीं। क्या कह रहे? सुमंद मति अर्थात बुद्धि नहीं है। सुमंद मति मतलब बुद्धि के बाप है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। और वाक्य में हम सब में बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होती तो हम ये उम्र में भगवान के भजन की तीव्रता बढ़ा लेते हैं, कम से कम 2 घंटा हर रोज भजन करते हैं। वैसे करना चाहिए 24 घंटा। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम नित्या नित्य युक्त उपासते। 24 घंटा सारी उम्र हमें भगवान की ही सेवा पूजा अर्चन भजन करना चाहिए, सारी उम्र हर पल, ये प्रिस्क्रिप्शन है। और सतयुग में ऋषि मुनि को कोई काम नहीं था, मोबाइल नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, सिंपल गाय, थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा, उसमें कुछ बो दिया कंदमूल, गाय से दूध मिलता रहे और बाकी का भजन। नो बॉस, नो मालिक, नो नौकरी, भजन सारा दिन। लेकिन कलयुग का जीव भजन 0। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आती है झंझट 1000। बस खाना और मौज करना, भगवान आई डोंट नो कहीं होगा, हमारी सेवा करता रहेगा, हमें सब देता रहेगा, वो दाता है, हम लेता है, हम लेते रहे, वो भजन करता रहे, हमारा भजन वो करे और कर रहा है, वो हमारा भजन अभी भी कर रहा है, 24 घंटा कर रहा है, 24 घंटा एयर, 24 घंटा पानी, 24 घंटा खान पान, हमारा वो चिंता कर रहा है, बड़ा छोटे की सेवा कर रहा है। तो ये कलयुग का आदमी सुमंद मत यो, बुद्धि है नहीं, बुद्धि यह है कि भगवान का हम भजन करें, ये बुद्धि है। सुमंद मत यो मंद भाग्या, उनका भाग्य भी मंद है, मंद भाग्या अनफॉर्चुनेट मिसफॉर्चुनेट, भाग्य है ही नहीं, मंद भाग्या उपद्रुता रोग से पीड़ित, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक, छोटे छोटे बच्चों को किडनी का प्रॉब्लम, उपद्रुता रोग से पीड़ित, ये कलयुग कलो अस्मिन युगे जना, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। ऐसे मंद भागी कम भागी जीवों के लिए सबसे सरल और सर्वोत्तम बात हमें शास्त्रों में से बताई, वो बात है जैसे मैंने कहा, वो बात क्या है, ये श्लोक एकांततः श्रेय, पुंसाम एकांततः श्रेय, इनका ये सवाल है। श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय में, सबसे पहला स्कंद पहला अध्याय में 6 सवाल किए गए, उसमें से पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल पुंसाम एकांततः श्रेय किम अरहसि, हमें बताइए। तो ये सवाल का जवाब दूसरे अध्याय में श्रील व्यासदेव कह रहे हैं, सवै पुंसो परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। सवै वै का अर्थ है सर्टनली, निश्चित रूप से, एकमात्र उपाय है, सवै सवै पुंसा मनुष्य का, परो धर्मो परम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, परम धर्म क्या करना चाहिए, तो सवै पुंसो परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज श्री कृष्ण की भक्ति करना ही मनुष्यों का श्रेय है, भक्ति करना। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहैतुकी अप्रतिहता। अहैतुकी का अर्थ है कोई भी प्रकार की अपेक्षा के बिना, स्पेशली भौतिक अपेक्षा। मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपके भक्तों का की सेवा चाहिए, ये अपेक्षा तो रखनी है, लेकिन भौतिक अपेक्षा के बिना, स्वार्थ की अपेक्षा के बिना, अहैतुकी अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ है इंटरप्शन, 24 घंटा कोई भी प्रकार का इंटरप्शन के बिना, कोई भी प्रकार का अवरोध के बिना, सतत तेल धारा व्रत सतत हमेश भक्ति करनी चाहिए, हमेश हर हमेश। सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अहैतुकी अप्रतिहता अनइंटरप्टेड अनमोटिवेटेड, कोई भी प्रकार की अपेक्षा बिना सतत भक्ति, तो उनसे ही आत्मा सुप्रसिद्धति संप्रसिद्धति, संपूर्णतया संतुष्ट तुष्ट पुष्ट तृप्त हो जाएगा आत्मा। ये आत्मा संप्रसिद्धति, संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट हो जाएगा। बाद में उनको बाह्य चीजों की कोई जरूरत नहीं रहेगी, उनको हमेशा आनंद मिलता रहेगा, संप्रसिद्धति। तो ये भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति ही आत्मा का कल्याण है, क्योंकि भक्ति ये खूब सरल, स्वाभाविक, सार्वभौमिक, सार्वजनिक है। सब तप नहीं कर सकते, सब दान नहीं कर सकते, सब शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, सब तीर्थों में पर्यटन नहीं कर सकते, सब स्वाध्याय नहीं कर सकते, सब ध्यान नहीं कर सकते, सब बड़े बड़े हवन आग नहीं कर सकते, सब व्रत का पालन नहीं कर सकते, सब धर्म का पालन नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति सरल है। हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे,
कौन नहीं बोल सकता और कौन नहीं सुन सकता, सब है ना, सब, बच्चा भी बड़ा भी, कुत्ता भी और बिल्ली भी। हम अभी कीर्तन करके आए तो कुत्ता बिल्ली ने सुना हरे कृष्ण मंत्र, भक्ति होगी। तो भक्ति सरल है, जीवों के लिए बहुत सरल है। कितनी सरल है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मुझे पत्र पुष्प फल जल यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी ना हो, गरीब से गरीब आदमी जंगल में हो, पानी भगवान को भोग लगा सकता, तोयम फूल भी जंगलों में फूल भी अर्पण कर सकते, पत्रम पत्र भी हर जगह पत्र मिल सकता है, कोई भी पत्र, स्पेशली तुलसी पत्र। तो पत्रम पुष्पम फलम, सब जगह फल मिल सकता है, फलम तोयम पानी, जस भक्त्या यो में भक्त्या, भक्ति भाव से प्रेम से, माय डियर लॉर्ड, हे भगवान, हे कृष्ण, मेरे पास इतना कुछ नहीं है, जो भी है मेरा प्रेम से स्वीकारो। तो भगवान प्रेम से विदुर पत्नी की केले की छाल स्वीकारते हैं, सबरी के बोर स्वीकार करते हैं, जूट है, सुदामा के चावल, कई उदाहरण है, ये तो शास्त्रयुक्त उदाहरण है, कई उदाहरण है जो भगवान हमारा प्रेम से जो भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त उपरोतम अस्नामी प्रयच्छात्मन। प्रेम से दिया हुआ मैं स्वीकारता हूँ। भगवान स्वीकारते हैं, भगवान गपशप नहीं करते, भगवान कहते हैं मैं स्वीकारता हूँ मतलब स्वीकारते हैं, लेकिन हमें प्रेम से, प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए, प्रेम से उनको अर्पण करना चाहिए। लो आज कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, ये चीज़ है, एक चीज़ भोग लगाओ, भगवान के साथ बातें करो, भगवान को प्रेम से अर्पण करो, तो भगवान प्रेम से दिया हुआ स्वीकारेंगे। तो भक्ति प्रेम से, भक्ति का अर्थ ही प्रेम है, भक्ति का अर्थ ही प्रेम। भक्ति भाव से दिया हुआ भगवान स्वीकारते हैं। तो भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों से पहले तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सब उपाधियों से मुक्त होके, हमारी उपाधियां क्या है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं MBA PhD हूं वगैरह, कई उपाधियां, पैसादार हूं, गरीब हूं, सब उपाधियों को मिटा के सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम उपाधियों से निर्मल होके हमारे इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना, उनको बोलते हैं भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये भक्ति की परिभाषा है कि हमारी इंद्रियों से श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना, हमारे हाथ और सब मन बुद्धि शरीर से अच्छा खाना पकाओ और प्रेम से भगवान को भोग लगाओ, और भोग लगाओगे तो ये सारी क्रिया, खाना पकाने की 2 घंटा ऑफरिंग, भोग लगाने की क्रिया, सारी क्रिया भक्ति है। इंद्रियों से, हमारे इंद्रियों से खाना पकाए तो हमारे इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करना, उनको बोलते हैं भक्ति। कैसे? उपाधियों से मुक्त होकर। तो ये भक्ति, ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी करते हैं। शुद्ध भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी क्या करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में? कहते हैं कि अन्य अभिलाषा शून्य, अन्य अभिलाषा शून्य, कोई भी प्रकार की अभिलाषा नहीं, स्पेशली भौतिक अभिलाषा शून्य, और ज्ञान कर्माद अनावृतम, और शुष्क ज्ञान को छोड़ छाड़ के, और कर्म स्वार्थ वाला कर्म जिससे हमें सुख मिले, स्वर्ग मिले, विषय सुख मिले, इंद्रिय तृप्ति मिले, तो ज्ञान कर्माद ये कर्म हमें अनावृतम छोड़ छाड़ के, अनुकूल है ना कृष्ण भगवान को जो अनुकूल है, अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण को जो अनुकूल है उनसे भगवान का अनुशीलन सेवा करना भक्ति उत्तमा, ये शुद्ध भक्ति है। तो ये शुद्ध भक्ति हमें करनी है कोई भी प्रकार की अभिलाषा के बिना, ज्ञान कर्म अनावृत होके भगवान कृष्ण को जो अनुकूल भाव से हमें उनकी सेवा करना, उनको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। इन शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण है, 6 लक्षण। एक लक्षण है क्लेशग्नि, शुद्ध भक्ति हमारे सब दुख दूर करती है, क्लेशों को दूर करती है। अगर हमारे क्लेश दूर नहीं हुए, उनका अर्थ कि हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। क्लेशग्नि शुभदा, शुभ और लाभ दाई भक्ति हमें शुभ देती है, हमें शुभ बनाती है, हमारा घर शुभ बनाती है, खान पान शुभ बनाती है, कुटुंब पैसा बिजनेस सब कुछ शुभ बनाती है। शुद्ध भक्ति शुभदा मोक्ष लघुता कृतम, भक्ति मोक्ष को गौण बनाती है, अर्थात भक्ति यही मुक्ति है। भक्ति का मुक्ति का अर्थ है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे न व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है हमारे स्वरूप में स्थित हो जाना, और हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो कृष्ण के दासत्व में स्थित हो जाना, कृष्ण की भक्ति में स्थित हो जाना, यही मुक्ति है। तो मोक्ष लघुता कृतम सांद्र आनंद, और शुद्ध भक्ति हमें सॉलिड आनंद देती है। शुद्ध भक्ति हमें सर्वोच्च आनंद देती है, सांद्र आनंद, सांद्र आनंद विशेष आत्मा कृष्ण आकर्षणी च, और सिद्ध भक्ति कृष्ण को भक्त की ओर आकर्षित करती है। शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण को भक्त की ओर आकर्षित करती है, ये भक्ति है शुद्ध भक्ति। तो ये भक्ति जीवों के लिए सरल है, कौन पुष्प या पत्ता या जल नहीं दे सकता, कौन हरे कृष्ण मंत्र सुन नहीं सकता, कुत्ता भी सुन सकता है, सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। भक्ति सरल है, सहज है, सर्वोत्तम है। दूसरे सब साधनों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं कि न माम साधयति योगो सांख्यम धर्मम उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा मम भक्तिर ऊर्जिता। जैसे आप मुझे मेरी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर सकते हो, वैसा मैं तप त्याग स्वाध्याय वगैरह से मैं प्रसन्न नहीं होता। न माम साधयति योगो सांख्य धर्म, धर्मों से प्रसन्न, धर्म से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, सांख्य योग से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। न स्वाध्याय सब शास्त्रों का अध्ययन करने से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, न तप तप से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, त्यागो संन्यास लेने पर मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। यथा मम भक्ति ऊर्जिता, जैसे मुझे मेरी भक्ति से आप प्रसन्न कर सकते हो, ऐसा दूसरे कोई साधन से मुझे आप प्रसन्न नहीं कर सकते, भक्ति से ही मुझे आप प्रसन्न कर सकते हैं। और भक्ति की शुरुआत होती है मुख से और जीभ से, क्योंकि ये सरल है, कर से कड़ा काम है, कोई भी दान कड़ा काम है, तब कड़ा दान कड़ा काम है, कोई भी प्रकार से आप भक्ति करोगे बहुत कड़ा काम, लेकिन मुख और जीभ से आसान है। काम करते जाओ, नाम जपते जाओ, खाना पकाते जाओ दो घंटा और मुख में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कौन नहीं कर सकता। बाथरूम में स्नान करते जाओ और हरे कृष्ण, कौन नहीं कर सकता। ड्राइविंग करते जाओ और मुंह में हरे कृष्ण, सरल है और सर्वोत्तम है, और दूसरे जीवों का भी कल्याण करने वाली है भक्ति। हमारा तो कल्याण भक्ति करेगी, साथ में दूसरों का भी। देखो ये हार बनाया किसी ने, तो पहले तो जिसने फूल पौधा का लालन पालन किया तो फूल उनको लग पौधे को फूल लगा तो पौधे की जब ये हार भगवान को जब सेवा में लगाते हैं हम, तो जो पौधे को लगाने वाला, पौधे को पानी देने वाला, बाद में पौधा खुद माला माल हो जाता है, भक्ति हो जाती है पौधा की, क्योंकि उनने फूल दिया और फूल लाके किसी ने बेचा और माली ने उनका हार बनाया और हार बना के प्रभु जी ने उनका पैसा कमा के पैसा दिया तो उनकी कमाई शुद्ध हुई और लाके भगवान को सेवा में लगाया फूल, तो कितने लोगों का कल्याण हो गया। भक्ति है, भक्ति भक्ति भाव से फूल, पत्रम पुष्पम यो मे भक्ता प्रयच्छति, मैं असनामी मैं ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो ये सारे लोग भक्ति में संलग्न हुए। उसी तरह हम नाम जप करते हैं खाना पकाते हुए, तो जो खाना पकाता है उनका कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना खाने में जाता है। पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग बाहर का खाते नहीं थे, किसी का खाते नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो पकाता है उनका सोच विचार सब कुछ खाने में जाता है। गंदी सोच, खाना गंदा, अन्न वैसा मन, अन्न वैसा शरीर। हमारा शरीर किससे बनता है? हम जो खाते हैं उनसे। हम 30 दिन नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर पतला दुबला हो जाएगा, और जैसे खाने लगेंगे शरीर बढ़ेगा। तो यू आर व्हाट यू ईट। तो गंदा खाएंगे गंदा शरीर बनेगा, गंदा चित्त, गंदा मन, गंदी बुद्धि। तो खाने पकाने वाले का चित्त का जो कॉन्शियसनेस चेतना होती है वो खाने में जाती है, और अगर वो पापी हो खाना पकाने वाला तो उनके सारे पापों का कर्म हमें भोगना पड़ता है। तो ये भक्ति है। हमने खाना पकाया शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से, चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, तो ये प्रसाद में जाता है, ये फूड में हम पकाते हैं उसमें जाता है, और बाद में भोग लगाते हैं तो और पवित्र हो गया। तो ये भक्ति सहज है, सरल है, सर्वोत्तम है, तो क्यों ना करें। और भक्ति की शुरुआत मैंने कहा किससे होती है? मुंह और जीभ से। मुंह और जीभ के दो कार्य, खाना और बोलना। बोलना क्या? हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
और खाना क्या? कृष्ण प्रसाद। जब कृष्ण प्रसाद खाएंगे हमारा शरीर किस चीज का बनेगा? प्रसाद का। हमारा शरीर प्रसाद बन जाएगा। 7 साल में आपके शरीर के हर कोश बदल जाते हैं, अर्थात 7 साल में सारा नया शरीर हमें मिलता है, साइंटिफिक। तो 7 साल आप प्रसाद खाते रहोगे तो आपका शरीर किस चीज का बनेगा? टोटल रिजुवनेशन, सारा शरीर प्रसाद का बन जाएगा। यू आर व्हाट यू ईट। इफ यू डोंट ईट आपका शरीर, और जैसे खाओगे तो प्रसाद खाओगे तो शरीर प्रसाद बन जाएगा, है ना? तो क्या है, सरल बातें नहीं है भक्ति की? कितना सरल है। खाना पकाने में हम हरे कृष्ण मंत्र से रटते हुए खाना पकाए, भोग लगाए, तो कितने सारे लोग भक्ति में लग जाते हैं। जिनने पकाया अन्न, जिनने अन्न बोया, हार्वेस्ट किया और मिल में आया, मर्चेंट, घंटी वाला, चक्की वाला, पैसा जिन्हें कमाया, सब सारा। तो हमारा वैदिक संस्कृति में सारा जो भी हम करें वो भगवान के संबंध में था, अभी हमारे इंद्रियों के संबंध में है सब कुछ, मेरा मेरा, मेरी तृप्ति मेरा। ओरिजिनल वैदिक संस्कृति स्पेशली साउथ इंडिया तो अभी भी बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, तो हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि साउथ में बहुत बड़े बड़े आचार्य और आलवार और आचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी और माधवाचार्य, सब बड़े बड़े आचार्य साउथ में, आलवार बड़े बड़े राजा, वैष्णव राजा, मुकुंद माला स्रोत्र, कुलशेखर राजा कुंवर, तो ये सब हमारी संस्कृति भक्ति, तो ये भक्ति से ही हमारा कल्याण हो सकता है। भक्ति तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? और जीभ से। क्या करना है? मुंह से बोलना और खाना। बोलना है क्या? सरल है ना? कोई तकलीफ पड़ती है? तब करना है, हिमालय में बहुत कड़ा काम है। सर हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो 16 माला हर रोज, 2 घंटा 16 माला करनी चाहिए हर रोज, नहीं तो फिर मृत्यु आएगा, जमरा आएगा, जमलोक, जमदूत और आपको फांस लगा और जोर से खींचेंगे। आपको ये शरीर छोड़ना नहीं है, आ सकते हो लेकिन वो पर जाना पड़ेगा, और उन वक्त जाने वक्त रोगे, कुछ काम नहीं बनेगा, कुछ भी काम नहीं बनेगा। अभी से सुधार लो, बिगड़ी बना लो, क्या बहुत बिगड़ी अभी बना लो, नहीं तो फिर जमरा आवे, झगड़ो कर से गया बिना नहीं चाले। जमदूत आके झगड़ा करेंगे और जाने के बिना नहीं चलेगा, जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि अभी से शाम में समझ जाओ कि ये सारा यहाँ पड़ा रहेगा और हमें जाना ही पड़ेगा, और जाके जाने वक्त कुछ लेके जाना होगा, नहीं तो नर्क। और लेके क्या जाना है? भक्ति। भक्ति का नाश नहीं होता, हर चीज तप नाश होता है, ज्ञान नाश होता है, सब कुछ नाश, लेकिन भक्ति कभी भी, आप दूसरे जन्म में भी जहाँ थे वहां से भक्ति शुरू करोगे और जन्म भी आपको ऐसा ही उत्तम मिलेगा। तब से काम नहीं, दान से काम नहीं बनेगा, कोई भी चीज से, धर्म से नहीं बनेगा, कर्म से नहीं बनेगा, भक्ति ही गरी असी, भक्ति ही सर्वोत्तम है, जिनसे हमारा संपूर्णतया काम बनेगा। तो भक्ति की शुरुआत होती है कहाँ से? मुंह से और जीभ से। क्या बोलना है? हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम।
और खाना है कृष्ण प्रसाद, जो भोग नहीं लगाता, भोग के बिना खाता है वो चोर है। कौन है? चोर। कौन कह रहे हैं? कृष्णा। कहाँ कह रहे हैं? भगवद गीता में। कौन सा अध्याय? तीसरा। श्लोक संख्या? 13, 14। 14 में दूसरी बात कहते हैं, 13 में कहते हैं वो घोर चोर है, और 14 में कहते हैं कि वो घोर पापी है, जो भोग लगाए के बिना खाता है वो कैसा है? घोर पापी। यज्ञ शिष्ट सिन्न संतो मुंचते सर्व किल विषयी भुजंते ते अघम पापा, घोर अघम पापा, घोर पाप भुजंते, खाता है, जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो क्या खाता है? घोर पाप। कलयुग है, कलयुग में मन से काम नहीं होगा, जीभ और मुख से काम होगा, कान से काम होगा, यहाँ से यहाँ, बस यहाँ नहीं होगा, और हो जाए बहुत अच्छा है, अगर एक दो मंत्र मन से हो भी गए तो बहुत अच्छा है, मन से ही करना चाहिए। और कोई सवाल?
वो कहता है कि माला भीड़ बैग में क्यों रखे को माला बाहर निकालना नहीं है।
कोई भी चीज अच्छी तरह आपको कैरी करनी है तो उनको बैग में रखते हैं ना, जैसे फोन अगर आपको कहीं भूल नहीं जाना और छोड़ नहीं जाना तो हमेशा जेब में या थैली में किसी में रखते हैं, तो ये माला पवित्र चीज है, उनको भी कैरी करने के लिए कुछ स्पेशल बैग रखना चाहिए। तो बीट बैग, बीट माला बैग, बीट की बैग्स, सो इट इज यू नो पवित्र भी रहेगी, कैरी में सुविधा रहेगी। और तीसरा सबसे ऊंचा नियम माला के बैग का ये है कि माला ओपन में नहीं करनी चाहिए, उनको कपड़े अंदर कपड़े में करनी चाहिए, ढांक के करनी चाहिए। तो इससे जो माला का फल है, करने का माला करने का फल आपके पास रहेगा, आपको मिलेगा। ओपन माला करते हैं हम तो उनका फल राक्षसों को मिलता है और राक्षस लोग बलवान होते हैं, तो इसलिए हम बीट बैग में रखेंगे हाथ तो वस्त्र में है, तो ये सुविधा है।
तो कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण।